لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر کے بارے میں اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، کوئی ایمان نہیں ان کے نصیب میں. یہ کون سا قول ہے؟ یہ وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دعوے میں کہا تھا کہ تو جن کو مرضی بہکا لے، لیکن میرے کچھ بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گا، اور کچھ بندے ہیں جو واقعی جہنم میں جائیں گے. لاملان جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ البتہ ضرور میں بھروں گا انسانوں اور جنوں سے جہنم کو. سورہ سجدہ آیت 13 میں بھی آتا ہے ولیکن حق القول منی، اور لیکن ثابت ہو گئی بات میری طرف سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا، تو وہ اپنے دائیں طرف دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ تھے ان کو دیکھ کے ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آدم ہے. کہا دائیں طرف کون ہے؟ کہا یہ ان کے وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، ان کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہے ہیں. اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو کون ہے؟ جو جہنمی، ان کو دیکھ کے روتے ہیں. کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی اولاد کی چھانٹی کرو، سارٹ آؤٹ کرو ان کو. کہیں گے اللہ تعالیٰ کس تناسب سے؟ کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دو اور ایک کو جنت میں ڈال دو. 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. ذرا ہم سوچیں، ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ شاید ہم 1000 لوگوں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. ٹوٹل نام لکھنا شروع کر دیں، چند 100 لوگوں کو ہم پورے دنیا میں جانتے ہوں گے، جس میں رشتہ دار بھی ہیں، جس میں ملنے والے بھی ہیں. ہر 1000 میں سے صرف ایک جنت میں جائے. صحابہ کرام تو اتنا گھبرا گئے، ڈرنے لگے، کہ پھر اللہ کے نبی نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ غم نہ کرو، یاجوج ماجوج بھی اسی میں سے ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے اندر سے ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ محنت کرنی پڑے گی نا، کوشش کرنی پڑے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جن کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ نہیں لائیں گے، یعنی وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. آج بھی دنیا میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کان بند ہو چکے ہوتے ہیں. آپ پیار سے بات کریں، آپ محبت سے بات کریں، آپ غصے سے کریں، آپ سختی سے کریں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، کانوں پہ غلاف ہے. یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ڈھیٹ کر لیتے ہیں؟ اور ایک دن میں یہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے کالا، توبہ کر لیتا ہے وہ بھی دھل جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتے ایک اور گناہ گناہ، اتنے نقطے لگتے جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور فرمایا یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کبھی کسی ایسے شخص سے اللہ نہ کرے کہ آپ کا واسطہ پڑے، اگر پڑ جائے تو اس کے لیے پھر آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اس بندے کی ہدایت کے کوئی اسباب کا انتظام کیجئے. وہ لوگ پھر نصیحت سے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یعنی انسان جتنے مرضی میٹھے بول بول لے، جتنا مرضی پیار کر لے، کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سٹبن ہو گئے، یہ ڈھیٹ ہو گئے، یہ نہیں سنیں گے، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کا درد کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. اور انڈائریکٹ قسم کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا، کیونکہ جب ایک چیز اتنی حد تک سخت ہو جاتی ہے نا، تو آپ اس کو اوپر سے تھوڑا بھی ماریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، ڈھیٹ بنانے لگتا ہے. اب آگے وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں لوگ سن کے نہیں سنتے. ایسی کیا کیفیت ہے کہ حق بات، اچھی بات پیار سے محبت سے بھی ان کے سامنے کی جائے پھر بھی نہیں مانتے؟ اس کی بہت بڑی وجہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا، جس کا تذکرہ آگے کیا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال دی ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں، لہٰذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک ان کے پیچھے، اور ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے وہ وجہ توک. یہ کون سا توک ہے؟ تکبر کا. کبھی آپ نے کسی انسان کو جو کمر کی درد کا مریض ہوتا ہے، یا جیسے مہرے جس کے خراب ہوتے ہیں، گردن میں کالر پہنے دیکھا ہوگا؟ اتنا بڑا کالر ہوتا ہے کہ گردن جو ہے وہ اس کی ہل نہیں سکتی. جہاں بھی ان کو جانا ہے ان کو پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ جب سوتے میں ہماری گردن میں بل پڑ جاتا ہے، صبح اٹھے تو بالکل اٹھا نہیں جاتا، ایک خاص جگہ پہ گردن ٹک جاتی ہے، اور ذرا اس سے مختلف جگہ پہ رکھیں تو درد ہوتی ہے. इससे भी ज्यादा सख्त कैफियत है उन लोगों की जिनकी गर्दनों में तौक पड़ चुके हैं। अब एक तो ये वो तौक है ना कि जो बंदा किबर का शिकार है, जो अपने आप को कहाँ लगा रहा है जहां उसको नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी इसके अंदर वो कैफियत है जो बाप दादा की तकलीद। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बड़े सदियों से करते आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल। अब लोग जब कुरान से दूर हुए, उसकी जगह लोगों के अफकार आए, लोगों के लिखे हुए किताबें आ गईं, खानदानों की बातें आ गईं। हमारे तो बाप दादा भी यही करते थे। लो, मेरी माँ ये करती थी। मतलब अगर मैं नाम लूँ ना, तो कुछ नाम सुन के आप फेमिलियर होंगे। मतलब अगर किसी को आप देखें वो कुंडे भरती हैं, रजब के महीने में खास कुछ खाने पका के बांटते हैं, आप उन्हें कहें कि देखें इसकी क्या दलील है, तो कहेंगे मेरी माँ करती थी। लो भला, मेरी माँ गाफिल थी? लो, मेरी तो सास करती थी, तो अब तुम मुझे कैसे रोकती हो। ये जो जुमला है ना, लोगों को हक से बहुत दूर कर देता है कि मेरे बड़े करते थे, मैं क्यों छूटूं। और ये जुमला बाज दफा इंसान के जन्नत में जाने की रुकावट बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का यही जुमला उनको जहन्नुम में ले गया, जन्नत से महरूम करके, कि मरते दम जब अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू तालिब आप कलमा पढ़ लें, अल्लाह ताला से मैं आपके लिए दुआ कर सकूंगा, आपने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, आप मेरे से इतनी मोहब्बत करते थे। ये दो ही तो बातें रहती है ना, अल्लाह के बाद या नबी से मोहब्बत या उसके मिशन में मददगार होना। कहा आप सिर्फ कलमा पढ़ दें। करीब था कि अबू तालिब जो थे वो कलमा पढ़ देते, लेकिन उनके रिश्तेदार पास बैठे हुए थे, अबू जहल जैसे और बाकी लोग, कहने लगे अबू तालिब मरते दम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दोगे? क्या तुम बाप दादा का दीन छोड़ के एक कल के बच्चे की बात मान लोगे? बस इस बात ने उसको आर दिलाई। और आखिरी जुमला जो कह के गया, वो कहना अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के दीन पे हूँ। और जब उसने ये जुमला कहा, अल्लाह के नबी वहां से यूं उठ के गए जैसे उसको पहचानते ही नहीं, वो कुफर पे मर गए। और लोगों ने अल्लाह के नबी से पूछा कि क्या अबू तालिब को इस्लाम से जो उनकी हमदर्दियां थी, या आपकी वजह से ही चले इस्लाम की मदद करते थे, क्या उसका कोई फायदा होगा? कहा कि जहन्नुम में जिस शख्स को सबसे हल्का अजाब होगा ना, वो अजाब क्या होगा कि उसके पाँव में आग की दो जूतियां पहनाई जाएंगी, और उसकी शिद्दत की वजह से उसका सर हंडिया की तरह खोलने लगेगा, और वो शख्स अबू तालिब होंगे। आप जरा सोचिए, फहम मुख महून, अल्लाह ताला कहते हैं हमने इनके अगलाल डाल दिए। अगलाल गिल की जमा है, जिसमें हाथों को गर्दन से बांध दिया जाता है, और अजकान जो है ये जकन की जमा है, आनाक उनुक की जमा है, गर्दन को कहते हैं। और मुखमहून का लफ्ज़ जो है ये काफ मीम खा से है, गेहूं जो पकने से लेकर जहीरा करने तक पानी ही में रहने दिया जाता है, वो गेहूं जिससे सत्तू बनाया जाता है। अरब लोग जो थे खुश्क सत्तू को फांग कर ऊपर से पानी पीते थे। और मुखमहून वो शख्स जिसके अंदर सत्तू जा रहा हो। मुखमा कहते हैं वो ऊंट जो पानी से सैर होकर गर्दन को ऊपर उठा ले। कभी देखे पानी पी के जब वो पीते ना, फिर गर्दन पूरी ऊपर करते हैं ताकि वो नाली में से पानी गुजर के नीचे जाए, इस कैफियत को मुकमन कहते हैं। इसी तरह घोड़े की जब बागें खींची जाती है तो इसका सर भी ऊपर उठता है, तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मंजर खींचा है मुतकब्बिर लोगों के, कि इनकी गर्दनें ऊपर रहती हैं, इतने अकड़े होते हैं, गर्दन झुकती नहीं, सजदा करना तो दूर की बात है, रुकू में नहीं जाना पसंद करते, ये अकड़ की वजह से खिंचे होते हैं। इनका हाल हुलिया, इनके कपड़े, इनका लहजा, इनका तरीका क्या होता है कि जिसकी वजह से ये अपने आप को अल्लाह से दूर करते हैं, यानी ये उनके ढीठपन और उनकी शिद्दत को अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिया कि ये वो लोग हैं कि जो इतने हिदायत से दूर हो चुके हैं कि इनको बात समझ ही नहीं आती। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो। और अब देखिए कि बहुत बड़ी वजह जो होती है वो खानदान परस्ती होती है, बिरादरी, लोग क्या कहेंगे, लो अब मैं इसको छोड़ दूँ, अब मैं वो करूँ। आज भी देखिए शादी ब्याह आते हैं तो हमारा हाल क्या होने लगता है, जान बलब आई होती है, खर्चे पानी से तंग होते हैं, फिर भी रस्में करनी है। क्या है जी, ये तो हमारे खानदान में होता है, अगर हमने इतने लोगों को बुला के मेहंदी का खाना ना खिलाया तो हमारी तो नाक कट जाएगी, और अगर हमने 100 जोड़े जमा ना किए तो लोग कहेंगे इसने तो जहेज ही नहीं दिया, और अगर 100 तोले सोना ना दिया तो बरी नहीं आई। यानी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, जो हमसे भी कमज़ोर है। मैं सोचती हूँ कि अगर किसी बंदे के दिल में लोगों का खौफ है ना, तो सिर्फ लोगों की वो कैफियत सोचे जो उसके अपने साथ भी लगी हुई है, हम कितने कमज़ोर हैं। इस वक्त हम सबके सामने बड़े अच्छे कपड़े पहन के, बड़े अच्छे नाई साफ सुथरे लगे, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे दिन में ऐसे आते हैं कि वो इंतहाई गंदी जगह पे बैठता है, नापाक। उसकी कैफियत क्या होती है? क्या वो कैफियत बंदा किसी के सामने खोलना पसंद करता है? बड़े से बड़ा बादशाह भी होगा फिर भी अपनी गंदगी खुद ही साफ करेगा। कभी किसी बंदे का खौफ आपको मजबूर करे ना अल्लाह के हुक्म को तोड़ने के लिए, तो फौरन सोचे ये मैं उससे डर रही हूँ जो खुद इतना कमजोर है, इतने प्यारे मालिक को छोड़ रही हूँ, उसकी नाफरमानी करके मैं अपने जैसों को राजी करूँ। यकीन करें ऐसे लगेगा लोग आपकी नजरों से गिर के साइड पे चले गए। और जहां लोगों के डर से आप अल्लाह को नाराज करें तो सोचिए फिर वो जात क्या कर सकते हैं, लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे, नाराज हो जाएंगे, मिलना छोड़ देंगे, धमकियां देंगे, खाना नहीं देंगे, कोई शौहर है तो घर से निकाल देगा। मिसाल दे रही, इंतहाई कैफियत यही हो सकती है ना। लेकिन जरा सोचिए अगर अल्लाह नाराज हो जाए, हमारा सांस उखड़ जाए, खाते खाते हमारे मुंह में लुकमा चला जाए, हम चल रहे हैं हमारा पाँव मुड़े, टांग धोरी और फ्रैक्चर हो जाए, वो जात कितनी कादर है जिससे हम बेनियाज होके बैठते हैं। और वो लोग जो हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम उनको नाराज करने से डरते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वजालना मिन बैनि अईदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, हमने इनके आगे और पीछे एक दीवार रखी हुई है। इस आयत को पढ़ते हुए तो मुझे इतनी तन्हाई का एहसास होता है कि जैसे एक शख्स खड़ा है, पीछे भी उसके दीवार है और बिल्कुल उसके आगे भी एक दीवार खड़ी की है। खौफ आता है सोच के, कोई घर में कोई पतली सी झेर हो, कोई ऐसी जगह जहां आप कोई चीज लेने जाएं और आप अंदर फंस जाए। हमारा तो हाल यह कि जरा क्लॉजेट में भी बंद होना पड़े तो उससे भी लोगों को खौफ आता है। कहाँ इतनी पतली दीवारें, ये कौन सी दीवारें? ये तासुब की दीवारें, ये आज के नार में आप कह लें ये फिरका परस्ती की दीवारें, ये तो हमारा मसलक नहीं, ये तो हमारी जमात नहीं, ये हमारा गिरोह नहीं। ना कुछ पता, ना कभी सुना, ना देखा, हक कह के सिर्फ चंद नाम मशहूर कर दिए, फुलां तो वहाबी, फुलां तो जी आपको कोई पता नहीं क्या बना देगा, और फुलां तो ये है। आप जानते हैं वो क्या थे? नहीं, आपने कभी सुना नहीं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं? यानी तासुब की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं कि हक समझ ही नहीं आता। खुद चाहे नमाज भी ना पढ़नी आती हो, खुद शायद कुरान पाक की कुछ चार आयतें भी तर्जमे से ना आती हो, सिर्फ लोगों से सुनी सुनाई बातों को दलील बना के खुद भी हक से रुक जाना और दूसरों को भी रोकना। अल्लाह ताला कह रहे फाहशई ना हम, पर्दे डाल दिए हमने उनकी आंखों पे, फहम ला युबसिरून, उनको फिर हिदायत नहीं दिखती, उनको वो अच्छी बात नहीं दिखती। व सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, बराबर है तुम पर उनको डराओ के ना डराओ, फहम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी ये इस हद तक पहुंच गए हैं तासुब में और मुखालफत में और एक दूसरे की जिद में, अब ये नहीं मानेंगे। ये कौन लोग हैं जो खुद को बड़े अक्लमंद समझते हैं, इंटेलेक्चुअल, बहस करते हैं। एक शख्स है और वो हदीस को नहीं मानता, क्या ख्याल है वो अपने आप को बेवकूफ समझता है? वो बीवी को कहता है तुम नमाज ना पढ़ो, कुरान में नमाज का लफ्ज ही नहीं है। अल्लाह के बंदे तुमने पढ़ा कुरान? 700 बार दफा नमाज का जिक्र। नहीं, वो तो सलात है, और सलात तो बस ऐसे ही बैठ के तस्बीह करने को कहते हैं। तो भाई जो अल्लाह के नबी नमाजें पढ़ के गए, नहीं रात का एक कसीर हिस्सा खड़े होने से आपके कदम सूज जाते थे, वो क्या था? नहीं, हदीसों को हम नहीं मानते। गोया के इस बंदे से बड़े की जहालत भी किसी की हो सकती है। यानी इस तरीके की बातें पेश कर देना, अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल समझना, आज के दौर का ये फैशन है कि तुम दीन को इस तरह रिजेक्ट करो कि लो इससे क्या होता है, नमाज नमाज तो दिल की होती है, पर्दा पर्दा तो आंखों का होता है। अच्छा जी, और क्या बात रहेगी? सूद, वो आज के दौर में तो आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो फिर घर तो लेना ही पड़ेगा और कारोबार में तो आप चलते ही नहीं है। अच्छा जी, फलां काम मसलन ये क्या करें? नहीं, ये तो अब अल्लाह के नबी कर नहीं सके, अब हमें तो आज करना है। यानी ऐसे लगता है कि अपनी मर्जी के रंग भरना चाहते हैं दीन में। आप देखिए, ये आपका घर है ना, मसलन कोई आपकी मर्जी के बगैर यहाँ से कुर्सियां मेज सब चीजें उठा के रखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा? थोड़ा बहुत आप बर्दाश्त कर लेंगे, कोई जाके किचन के सारे बर्तन निकाल के बाहर रखे, फिर अपनी मर्जी से इधर उधर रखे, आप पसंद नहीं करेंगे? आपके पके हुए खाने में कोई जाए और 2 चम्मच नमक के और डाल दे, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, मेरे घर में तुम अपनी पसंद के काम कर रहे हो, कोई बर्दाश्त नहीं करता। कोई शख्स पेंटिंग कर रहा है, आप जाके उसका ब्रश लेके अपनी मर्जी से उसमें रंग भरने शुरू कर दे, कोई पसंद नहीं करेगा? क्या अल्लाह के दीन में हम जो मर्जी करना चाहें? अल्लाह ने एक दीन मुकम्मल कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, सूरह मैदा की आयत है कि आज के दिन मैंने दीन पूरा कर दिया, दैट्स फिनिश, खत्म खत्म हो गया, और इसका नाम भी रख दिया इस्लाम। कोई हनफी नहीं, कोई शाफी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, कोई वहाबी नहीं, तुम्हारा नाम भी रख दिया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम मुसलमान हो, बात खत्म। अल्लाह का नबी पैगाम दे गया, पैगाम पूरा हो गया, इसके अंदर आ जाओगे तो दीन है। हम कहते हैं ये तो पुराना हो गया, हम अपनी मर्जी के काम करेंगे। भाई अल्लाह के नबी ने किए थे? नहीं, उनको तो टाइम ही नहीं मिला, एक दफ़ा एक औरत से मेरी बात हुई, पहले की बात है, कोई बात करने लगी तो नबी सल्लम की सालगिरह मनाने की बात हो रही थी, मिलादुन्नबी के नाम से या कुछ ऐसी कह रही थी। मैंने कहा मुझे तो सीरत में कहीं नहीं मिला, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के साथ कई दफ़ा पढ़ाई भी है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने कभी इतनी बर्थडे की हो। करी नहीं, उनमें तो बड़ी इंकसारी थी, वो बेचारे अपने आप को थोड़ी खुद मनाते, उनका ख्याल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मतलब बड़े आजिज मिजाज थे, तो अपनी सालगिरह उन्होंने नहीं मनाई। मैंने कहा ठीक है, हो गया, आगे चले। 2 साल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो जो थे वो खलीफा बन के रहे, उन्होंने भी नहीं मनाई। कहेगी नहीं, अबू बकर को तो ऐसे वो कुछ ऐसी बात कर दी होगी। हजरत उमर ने क्यों नहीं मनाई? वे 10 साल मिले थे, उमर जैसा शख्स किससे डरेगा? अगर मिलाद नबी मिलाना अल्लाह के नबी से मोहब्बत की दलील होती या आपकी तरफ से एक सिफारिश का जरिया होता तो उनको ख्याल नहीं आया। अबू बकर का दौर गया, उमर का गया, हजरत अली का गया, हजरत मुआविया का गया, इतनी सदियां गुजरते गुजरते, ये आज से कोई 100-200 साल पहले की ये बिदत जो शुरू हुई, आप कहते हैं ये सारे आपकी मोहब्बत के बगैर दुनिया से चले गए, हम ही मोहब्बत वाले आ गए। जरा सोचिए, और शैतान वो लोग जो दीन की तरफ नहीं आते ना उनसे इतना परेशान नहीं होता जितना उनसे परेशान होता है जो दीन की तरफ आते हैं और सही बात सीखने लगते हैं। जिसके सामने कुरान खुल जाएगा ना, शैतान को हाथ पांव पड़ जाते हैं। कोई बंदा सारी रात इबादत करता रहे ना, शैतान को कोई फिक्र नहीं होती, उसको पता है इसने कुछ अच्छे काम करके कुछ अपनी मर्जी की बिदात भी कर लेनी है, मुझे इस पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो ही कुरान खुलता है ना, आप देखिए सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ उसी वक्त शुरू होती है। आप घर में सारा दिन नफिल पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप वजीफे करें, आप बड़ी बड़ी तस्बीहां लेके बैठे रहें, आप गुठलियां पढ़ें, आपके घर वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे, एज इट इज के उनको खाना पानी मिलता रहे। जो ही आप कुरान की बात करेंगे ना, ऐसे लगता है कि जैसे मिर्चें लग गई। वजह क्या है? ये अंदर से कैफियत वो वाली है कि शैतान को पता है कि अगर इनके घर में एक बंदे के हाथ में कुरान खुल गया ना, तो बस समझ लो कि मेरा तो काबू इस पे नहीं चलेगा। पहले ये खुद बदलेंगी, आज से ऐसे बच्चों को बदलेंगी, फिर आखिर घर का माहौल बदलेगा, मेरा तो सारा प्लान खराब हो गया। ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे वक्त में अगर कोई एक बंदा इस बात पे जम जाता है ना, तो अल्लाह ताला के हुक्म से शैतान से 1 साल नहीं, मैं कहती हूँ जिस घर की खवातीन कुरान की तरफ आ जाती है ना, बस लगा लें हिसाब कुछ कम बेश करके, 2 कुछ साल के बाद घर के दूसरे लोग भी आने लगते हैं। शोहर अगर दूर ज्यादा है ना, 4-5 साल, 5 साल के अंदर वो पूरा घराना अल्लाह के हुक्म से दीन पे आ जाता है, और हर खानदान में से पहले कोई एक शख्स उठता है। हम भी पीछे कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि पूरा खानदान इसी तासुब की दीवारों में था, उनके घरों में सब पकते थे, 11वीं भी पकती थी, खाने भी पकते थे, वो इमामों के नाम की सबीले भी देते थे, घोड़े भी निकलते थे, अल्लाह किसी एक बंदे को हिदायत देता है, और जिस बंदे को हिदायत मिलती है लोग उस वक्त कहते हैं ये मुनकर हो गए, ये वहाबी हो गए, ये बेदीन हो गए, ये ऐसा हो गया। भाई तुम कैसे कह सकते हो मुझे इसकी दलील दो? वो एक शख्स जो पहले शुरू में थोड़ी थोड़ी मुखालफत का शिकार होता है ना, बाद में लोग चुप हो जाते हैं। यकीन करें, हर वो बंदा जो आपके दीन पे आने से परेशान है ना, आप इंजॉय करें, पहले से तैयार रहें, मत सोचें कि मैं दीन पे आऊंगी तो लोग कहेंगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, कभी नहीं कहेंगे। शैतान उनके दिल में ऐसे उल्टे सीधे सवाल डालेगा आपने कभी सोचे नहीं होंगे। और सबसे पहली मुखालफत अपने घर से आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ आपका चचा अबू लहब, ये क्या कह रहे हो, ये कौन सा दीन है भाई, हमारे बाप दादा गलत थे क्या? ये 360 बुत जो हमने जमा किए हैं, क्या ये गलत थे? क्या लात मनात उज्जा याऊक ये गलत थे? हर दौर का एक ही कहानी, उस दौर में मिट्टी और लकड़ी के बुत थे, आज के इंसानों की कब्रें, उनकी दरगाहों को लोग कहेंगे, लोग क्या हमारी माँ गलत थी? भाई ठीक है, वो मासूम लोग थे, वो भोले थे, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, उनकी माएँ बेचारे सीधे साधे लोग थे ना, उनकी ज़िंदगी में इतने गुनाह थे, नेकियों के नाम पे भी जो करते थे वो भी जो भी कर पाते होंगे अच्छे ही करते होंगे ना। लेकिन जब किसी बंदे को बात समझ आ जाती है, उस बात की वजह से अगर वो बात ना समझेगा तो उसके लिए एक बवाल होगा। यही बात अल्लाह ताला ने यहाँ कह दी कि हमने उनके आगे और उनके पीछे एक ऐसी दीवार रखी है, अब नहीं समझेंगे। और सवाओ नलई मान जरता हूँ ममलम तुंजिर हम लायो में नोन, हाँ किसको आप डरा सकते हैं? इसका तस्करा अगली आयत में आ गया, इन नमा तुंजिर मन तबा जिक्र व खशीज रहमान बिलगैब। ये दो खूबियां पैदा करनी है हमने अपने अंदर। कहा बेशक आप तो सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो इस जिक्र यानी कुरान की पैरवी करे और बिन देखे रहमान से डरे। फबशिर हुबी मगफिरत इम वाजरिन करीम, ऐसे लोगों को आप मगफरत और बाइज्जत अजर की खुशखबरी दे दीजिए। ये हैं वो दो खूबियां जो अगर इंसान अपने अंदर पैदा कर ले تو امید ہے کہ صحت مل جائے گی۔ پہلی بات اللہ کا خوف، انسانوں کا نہیں، اللہ کا۔ اور کون سا خوف؟ بن دیکھے، اللہ سامنے نہیں ہے۔ اگر آج اللہ کی ذات ہمارے سامنے آ جائے نا، تو ہم میں سے کوئی اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نزول فرمائیں گے، تو لوگ آپ کو دیکھ کے فوراً سجدے میں جانا چاہیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نہیں جھکے تھے، ان کی کمریں تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ پھر وہ روئیں گے، کہیں گے دنیا میں ہم نمازوں کی طرح بلائے جاتے تھے، ہم نہیں جاتے تھے جبکہ ہم صحت مند تھے، آج ہم نہیں ہو رہے۔ رسوائی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، پتھر کے سلے بن جائیں گے ان کے جسم، لیکن جو دنیا میں ڈرے ہوں گے، وہاں ان کو پھر مغفرت کی خوشخبری ہیں۔ ڈرنا تو دنیا کا تھا، وہاں تو بشارتیں ہیں، واجر کریم۔ اور پھر وہ خوبصورت آیت ہے کہ جو ہم سب کے لیے اپنے محاسبے کی ہے، کہ انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارہم، بے شک ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ تین باتیں اس کے اندر۔ پہلی بات ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ہم سب کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئے جہان میں آباد کیے جائیں گے۔ آج یہ جو دنیا ہے نا، یہ آخری دنیا نہیں ہے، یہ ایک دنیا ہے، یہ اختیار کی ہے۔ اصل اسلام کا خلاصہ بھی یہی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، امتحان کے لیے ہے، عارضی ہے۔ یہاں یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ یہاں سے گزر کے آگے جائیں گے، وہاں ایک بہت بڑی دنیا ہماری منتظر ہے۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، سنا، مقصد زندگی کو سمجھا، اس کے ساتھ جوڑا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ اور جنہوں نے اس دنیا میں اپنی مرضی چاہی، وہاں پھر ان کو اللہ کی ماننی پڑے گی۔ ہم سب دیکھیں، تین دفعہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یا تکرار سے کہا انا، پھر نحنو، پھر نحیی، ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کل جب دوبارہ اگلی دنیا میں ہم جائیں گے، ہم زندہ کیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نا کہ بتاؤ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیا کر کے آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا، تمہاری دوڑ دھوپ کہاں تھی۔ ہم ساری دن کی روٹین بھی سنا دیں گے نا، یہ کرتے تھے وہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے وہ قصہ ختم، وہ دنیا کے میلے تھے، کھانا پینا سب ختم، یہ بتاؤ کہ تم نے آج کے لیے کیا کیا، کیا کر کے آئے ہو، کیا جمع کر کے آئے ہو۔ ہم اس دنیا میں ایک اگلے جہان کی تیاری کے لیے آئے تھے اور ہم بھول گئے۔ آپ دیکھیے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں نا، جاؤ مجھے کچن سے چمچ دو یا مجھے چھری دینا، اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آتا ہے اور چھری لے کے آتا ہے، اور وہ وہاں جا کے کچھ اور ہی دیکھے اور وہاں کھانے پینے شروع کر دے یا کچھ اور ہی مستی کرنے لگے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہے گا میں نے تمہیں بھیجا کس کام تھا اور تم کرنے کیا لگ گئے۔ یہی جملہ اگر ہم اپنے اوپر رکھیں، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا اور ہم کر کیا رہے، کیا آج اس احساس کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے کہ ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہماری زندگی ایک نئے سرے سے ہونے والی زندگی ہے۔ اگر یہ دنیا ہی ہوتی نا تو شکر تھا، مرتے مٹتی ختم، بری اچھی گزری، بری گزری، کامیاب تھے ناکام تھے، آج مرے مٹی ہوئے، کل دوسرا دن۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی چڑیا کو دیکھتے، کبھی تنکے کو دیکھتے، کہتے ہائے کاش میں چڑیا ہوتا، اور مرتی اور بھولی بسری ہو جاتی، کاش میں ایک تنکا ہوتا جس کو لوگ توڑ کے پھینک دیتے اور مجھ سے میرا حساب نہ ہوتا۔ کیونکہ دوبارہ جینے کا تصور حساب کا تصور دیتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا، ہم سب اٹھیں گے دوبارہ۔ اتنا ایمان رکھیں اس بات پہ جتنا آپ کو اس وقت اپنے یہاں بیٹھنے کا اعتبار ہے نا، اتنا اعتبار رکھیں کہ مرنے کے بعد ہم سب نے دوبارہ ضرور اٹھنا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو مختات بنا دیتی ہے۔ ہم لکھ رہے ہیں کہ کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ اس ایک آیت پہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے، بہت ڈیٹیل سے اس میں بات ہوئی ہوئی ہے، واٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ، کتاب زندگی میں کیا لکھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو اس دنیا میں نیکیوں کی صورت میں آگے بھیج رہے ہیں، یہ قدم ہوا ہے، گناہوں کی صورت میں بھیج رہے ہیں، یہ قدم ہوا ہے۔ یہ پچھلے ایک گھنٹے سے جو بات ہم لوگوں نے کہی سنی، یہ ہمارے لیے وہاں جا کے انشاءاللہ قدموں کی صورت میں، نیکیوں کے مجموعے کی صورت میں جمع ہو گئی۔ اور اگر تین گھنٹے بیٹھ کے کوئی گناہ کی چیز دیکھی، تو وہ بھی کل آخرت میں ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گی۔ इस दुनिया में किए हुए गुनाह कल मैदाने महशर में सबके सामने पेश किए जाएंगे कि ये बंदे जो थे ये काम करके आए थे। अगर ये साथ जिंदगी में आ जाता है तो फिर क्या आप देखिए कि उसके बाद इंसान गफलत की जिंदगी गुजार सकता है? आप एक लफ्ज़ भी गलत अपनी जुबान से बोल सकते हैं अगर आपको ये यकीन हो कि ये मेरी बात लिखी जा रही है? मसलन अगर मैं बोल रही हूँ ना और मुझे पता हो कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो क्या मैं ऐसे बीच में बेकार बातें करूंगी? नहीं, मुझे तो गम लग जाएगा कि जो मैंने बोलना है वो तो लिखा जाएगा, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, और जब इसको दोबारा वो सुनेंगे तो हो सकता है कि यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं उससे कितने ज्यादा लोग और मेरी इस बात को सुनेंगे, तो मुझे तो बड़ा अफसोस होगा अगर मैंने ऐसा किया। आप लोगों को शादियों में देखा करें, जब मूवीज बनती हैं जरा कैमरे का रुख अपनी तरफ देखते हैं तो फौरन परेशान हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। खाना खा रहे होंगे तो बिल्कुल सीधे होके बैठ जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमारी मूवी बन गई तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम इस तरह बोल रहे थे। तो ये एहसास जो है ना, ये इंसान को वाकई एक संजीदा इंसान बनाता है कि माँ कद्दम हूँ और वह आसार हूँ। ये तो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा तवज्जो करने वाली चीज़ है। हम अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं? असरात तीन तरह के होते हैं ना, हमारी ज़ात से इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। एक माँ का घर में एक असर होता है, आप बहू घर में लाते हैं उस बहू का किरदार आपके पूरे घर पे असर होता है। कोई चुगलखोर औरत घर में आ जाती है, सारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हम्बल मिजाज की औरत घर में आ जाती है तो उससे घर का माहौल बदल जाता है। एक एक चीज़ का असर होता है ना। बाज़ लोग होते हैं उनकी वजह से दीन फैलता है, बाज़ लोग होते हैं उनको देख के लोग और भी ज़्यादा गुनाह जो है वो करने लगते हैं शौक से। हम में से हर बंदा दुनिया में कुछ ना कुछ फैला रहा है। किसी की ज़ात से फैशन फैल रहे हैं, किसी की ज़ात से बेहयाई फैल रही है, किसी से फहाशी फैल रही है और किसी से नेकी की बात फैल रही है, और इसका ऑपोजिट भी है, अच्छे भी फैल रहे हैं और बुरे भी फैल रहे हैं। दूसरा जो असर होता है कदमों के साथ आसारा हम का, वो क्या है कि हम अपने प्रिंट्स दे रहे हैं, यानी हम जिन कुर्सियों पर भी बैठे हैं हमारी इन कुर्सियों ने हमारे प्रिंट्स ले लिए हैं। कल क़यामत के दिन ये कुर्सियाँ बोलेंगी कि यहाँ बैठ के इन्होंने अल्लाह का कलाम सुना था। अभी थोड़ी देर बाद शायद सब चीज़ें मिक्सअप कर दें तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप किस कुर्सी पे बैठी थी, लेकिन इस कुर्सी, इसके नीचे की ज़मीन, इसके नीचे की सात ज़मीनों ने आपके प्रिंट ले लिए। कल क़यामत के दिन ये गवाही देंगी कि अल्लाह यहाँ बैठ के इन्होंने अच्छा काम किया था। आप किसी दूसरे का जूता पहन के चले जाते हैं, चलो मेरा अच्छा नहीं, मैं उसका ही पहन जाऊँ, उसको क्या पता चलेगा? किसी जगह मस्जिद में थे या बहुत जूते थे, वो जूता जहाँ जहाँ आप लगेंगे ज़मीन के उन टुकड़ों ने प्रिंट्स ले लिए। कल क़यामत के दिन गवाही देंगे कि अल्लाह नाजायज़ जूता पहन के यहाँ से ये गुजरी थी। मुझे कल किसी की बात मैंने सुनी, यानी मेरे दिल भी खुश हुआ कि ईमान जब ज़िंदा होता है तो इंसान को कैसे रहनुमाई होती है, कि जब वो नए नए किसी वेस्टर्न कंट्री में आए तो कोई जॉब शुरू की और एक दिन में गालिबन कह रहे हैं कि उस दौर में 3,000 करोन कमाते थे, इतनी आला पे थी। कुछ इस तरह का काम था तो उसको वो लीड करते थे, पे बहुत ज़्यादा थी। तो अब उनको ये नहीं पता होता था कि बॉक्सेस में क्या है, और वो उठवाते कहते हैं कि एक दिन जब वो बॉक्स एक के हाथ से लेके दूसरे के हाथ में दिया जा रहा था तो पता नहीं उसने पकड़ा नहीं या क्या हुआ तो वो नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा तो एकदम छन छन की आवाज़ है, और बाद में पता चला कि उसके अंदर शराब की बोतलें होती थी या कोई ऐसी चीज़ होगी, और जब वो गिरी तो वो कैंस को टूटे और उसकी स्मेल बैठ शुरू हुई। इन्होंने पूछा कि ये किस चीज़ की स्मेल है? जो कंपनी वाले थे उन्होंने कहा कि हो सकता है इसमें वाइन होगी तो उसकी ये स्मेल है। इन्होंने कहा कि वाइन क्यों होगी? उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी जो सामान पीछे हमारे शिपमेंट्स आते हैं उसमें कुछ शराब भी होती है, लेकिन हमें बाहर पता नहीं होता किस चीज़ में होती है। कहते हैं वो लड़का जिसका ये काम था वो सीधा वहां से गया अपने ऑफिस में अपने मैनेजर के पास, उसने अपना चीज़ें रखी, कहने का मुझे आपकी जॉब नहीं करनी। कहा भी क्यों? कहने लगा कि मैं शराब को एक जगह से दूसरी जगह उठवा भी नहीं सकता, मेरे लिए ये नाजायज़ है, क्योंकि हदीस में कि एक शराब की वजह से 10 लोगों के ऊपर लानत होती है, और उसमें एक ये भी है एक जगह से उठा के दूसरी जगह जाने वाला। उसने 3,000 वाली पे छोड़ दी एक दिन की। उसके ओनर ने कहा कि तुम्हें पता है यू आर मेकिंग मोर मनी देन मी, कि तुम मेरे से भी ज़्यादा पैसा बना रहे हो इस वक्त इस काम में, तो तुम इतनी बड़ी चीज़ सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो कि इसमें कोई शराब के कार्टून हो गए? उसने कहा मैं अपनी कमाई में ये चीज़ शामिल नहीं कर सकता, कि चाहे वो भूल से हो, और उसने वो जॉब छोड़ दी। और उस वक्त छोड़ना आप सोचें कितना बड़ा इम्तिहान होगा, जब इंसान नया नया आता है किसी मुल्क में और अल्लाह ने आज उसको कहते हैं उससे भी अच्छी जॉब दी हुई, इतना पैसा है उसके पास, ये अल्लाह के काम है, आपको क्या पता है? आप शराब की एक बोतल उठाते हैं, जो लोग ऐसी चीज़ें बेचते हैं रखते हैं, आप देखिए जहाँ से निकलते हैं आप जितनी दफ़ा उसको खोलते हैं कार्टून को, उसको निकालते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, फिर वहाँ से उठा के काउंटर पे जानी उसको लेना, एक एक जगह पे प्रिंट लग रहे हैं। कल क़यामत के दिन ये बोलेंगे कि ये नाजायज़ चीज़ इसके हाथों से निकली थी, अब जिनका ईमान और तकवा जिंदा होता है वो तो रिस्क नहीं लेते, और जिनका ईमान कमजोर वो कहते हैं अब छोड़ो ना, अब कौन इतने पैसे करे, फिर खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से। नहीं, माँ कद्दमू वा सारा। और असरात की तीसरी सूरत हमारी औलादें हैं। हम क्या असरात छोड़ रहे हैं? बच्चा जो होता है ना, ये माँ बाप की निशानी होता है। असर की जमा असर निशानी को कहते हैं। उर्दू में भी आपने देखा होगा, बाज़ दफ़ा लोग बच्चों को निशानियाँ कहते हैं। हाय, खुद तो मर गई और अपनी निशानी छोड़ गई। बाज़ दफ़ा बहू का इंतकाल हो जाए, बेटी का हो जाए, तो छोटे पोते नवासे को देख के माँ का दिल जल रहा होता है। यही कैफियत अल्लाह ताला ने यहाँ रखी कि सोचो तुम अपने पीछे क्या सार छोड़ के जा रहे हो। आपको पता है कि मरने वाले पर जो लोग बातें करते हैं ना, उसके बारे में वो भी लिखी जाती हैं। एक मौके पे नबी सल्लम के दौर में ऐसा हुआ कि एक औरत का जनाजा गुजरा, तो लोगों ने उस कहा कि बड़ी अच्छी औरत थी, अच्छे अखलाक की थी, नेक थी। तो आपने फरमाया वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई। फिर एक और जनाजा एक मौके पे गुजरा, तो लोगों ने उस औरत की बुराई की कि बड़े बुरे अखलाक वाली थी, रिश्तेदारों को तंग करती थी या हमसायों को बुरा सलूक करती थी। तो आपने कहा वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई। क्या वाजिब हो गई? कहा पहली के ऊपर जन्नत वाजिब हो गई लोगों की उन गवाहियों की वजह से, और दूसरे पे जहन्नुम वाजिब हो गई उसके बुरे किरदार की वजह से। हम अगर इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारें तो ज़रा सोचें क्या फिर हम वही रहें जो आज हैं? हम तो ऐसे लगते हैं कि जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें इसकी परवाह ही कम है कि हमारा पीछे जमा क्या हो रहा है, अल्लाह की नज़रों में हम कैसे हो रहे हैं। हर ख़ानदान में आप देखिए कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको आप देखते हैं आपको एकदम मोहब्बत के एहसास, तो पोलाइट, ना किसी की अच्छी करने वाले ना बुरी करने वाले, हर वक्त नरम दिल। मुझे किसी बुजुर्ग की बात याद आ गई, वो कहती थी मैं जब रात को सोती हूँ ना तो मैं तो अपना दिल साफ करके सोती हूँ। बहू बेटियों को भी कहती थी कि देखो मैंने अगर तुम्हें कभी कुछ सताया और कुछ कहा तो मुझे माफ़ करो, मैं रात को सोने से पहले तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अब कितनी अच्छी होता है हमारा हाल है कि अगर हमें किसी से कोई एक बात बुरी मिल जाती है ना, हम कहते हैं इसको तो कब्र की दीवारों तक नहीं माफ़ करूंगी। यदि एक शख्स के जुमले मेरे कानों में आते हो, कहते हैं कि मैं तो मरते दम तक अपने भाई का मुंह नहीं देखूंगा, अगर तुम लोग जबरदस्ती भी मुझे उधर फेंकाओगे तो मैं वहां से भी उठ के आ जाऊंगा, मेरी तो लाश पे भी उनको ना बुलाना। ये बातें करने की, सगे भाई के लिए कोई बंदा ये बात करे तो आप सोचिए ये दिल की सख्ती की बात नहीं? नबी सल्लम ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा अगर कोई किसी दुनियावी वजह से, यानी दीन का एक मामला और होता है, यानी किसी से नाराज रहते अगर दो भाई 3 दिन से ज्यादा, तो उनकी नमाज उनके कानों से ऊपर नहीं जाती। हम अल्लाह से तो माफिया मांगते रहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नक अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्व फ़ाफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू माफ़ कर दे, तू माफ़ी को पसंद करता है और खुद दूसरों को माफ़ नहीं करता। कल अल्लाह पूछेगा ना कि तुम मुझसे माफ़ी मांगते थे, तुमने किसी से माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? एक जगह आता है कि अगर किसी से कोई माफ़ी मांगे और वो उसको माफ़ ना करे तो उसके ऊपर, मुझे सही लफ्ज़ इस वक्त हदीस के याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी उसके ऊपर ऐब है कि गालिबन उसके गुनाह उसके ऊपर पड़ जाते हैं या शायद इससे भी ज़्यादा। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि इस शऊर के साथ जिए कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं इसके क्या असरात हैं। और ये जो मासूम बच्चे हमें देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी आँखें, ये छोटे छोटे कान जो हमें देखते और सुनते हैं, ये कल हमारे असरात कबूल करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आज इन्हीं हालात में हमारी दुनिया से वापसी हो जाए तो आप सोचिए कि बच्चे कैसे तैयार किए हुए हैं। क्या हमारे बच्चे हमारी कब्र पे जाके कोई दुआ करने वाले होंगे या हमें गाने सुनाने वाले होंगे? ज़िंदगी भर तो ये हमारी बात ना माने, या ज़िंदगी भर तो हम इनकी दुनिया ही बनाते रहें और इनको खुदा फरामोश ज़िंदगी गुजरवा दें, कल मरने के बाद क्या हमारे हक में सदका जारिया बनेंगे या हमारे खिलाफ सदका जारिया बनेंगे? ये इंसान को सोचना है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहू फ़ी इमामिन मुबीन, हमने हर चीज़ को एक रोशन किताब में लिख दिया है। कल की रोशन किताबें तो कोई और थी, आज की कंप्यूटर है। आप देखिए कि ये स्क्रीन जो होती है ये क्या है, ये रोशन स्क्रीन है। कल लोग कहते थे कि रिकॉर्ड करने का मतलब कि लिखो, एक एक चीज़ लिखो, खाते बनाने। आज आप देखिए क्लिक करते हैं उसको 10 दफ़ा प्रिंट कर लें, कॉपी कर लें, आप एक चीज़ की 10 कॉपियाँ बना लें, इतना आसान है। और आख सही ना कल हसास है, हा स्वाद जा, कंकरी और पत्थर को कहते हैं। अरब लोग जब तक किसी चीज़ को गिनने के लिए कंकरियाँ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक़्त कोई इस तरह के हालात तो नहीं थे जैसे आज हम हाथों पे गिनते हैं ना, 1 2 3 पोरों के ऊपर, इसी तरह वो करते थे। तो यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, हम सब कुछ रख रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ तुम गिन रहे हैं, कर रहे हैं, अब तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है तुम खुद सोचो। खुलासा क्या है? पहली बात कि गफलत की ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह की किताब वाली ज़िंदगी बसर करनी है, यही मकसद था अल्लाह के नबी के आने का। अगर हम इस किताब से ताल्लुक जोड़े बगैर दुनिया से चले गए तो हमारे लिए बचना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी हकीकत हमारे सामने मौत की सूरत में खड़ी है कि अगर आज हम उसको महसूस कर लें तो फिर हो नहीं सकता कि हम हंसे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आखिरत की जो बातें मुझे पता है ना, तुम्हें अगर पता चल जाए तो तुम थोड़ा हंसो और ज्यादा रोया करो। आज हर वक्त फन का मूड है, पार्टी, फन, ये वो, खाना पीना, ऐसे लगता है जैसे जिंदगी इंजॉयमेंट का नाम है। हर थोड़ी देर बाद हम कहते हैं बोर हो रहे हैं। आज के बच्चों का मसला क्या है? बोर। घर में बैठे हैं तो बोर, टीवी रोज देख रहे थे वही चीज, अब बोर हो गए, ये खाना रोज खा के बोर हो गए। यानी ऐसे लगता है जैसे दुनिया में पिकनिक मनाने आए हुए हैं। हालांकि दुनिया में आने का मकसद इससे बहुत बड़ा था, अगर उसको हमने ना समझा तो हो सकता है कि कल इसकी वजह से मुश्किल पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब पे रहम करे। जो कद्दमू में बात हुई थी, आसारा हम में नेकी की तरफ हमारे बढ़ते हुए जो कदम है ना, ये भी असरात हैं। कभी हमें नेकी की बात सुनने या सुनाने के लिए दूर जाना पड़ता है, वो भी हमारे लिए असरात बनते हैं। नबी सल्लम के दौर में बनू सलमा एक कबीला था, तो मस्जिद नबी से थोड़े दूर थे, तो उन्होंने कोशिश की कि हम मस्जिद के करीब आ जाएं ताकि जल्दी मस्जिद पहुंचेंगे। तो आपने फरमाया कि नहीं, अपनी जगह पे बैठे रहो, तुम्हारे कदमों के निशान भी गिने जाते हैं। उनके ईमान इतने थे, वो दूर होते थे, करीब उनको फर्क नहीं पड़ता था, उन्होंने जाना मस्जिद में ही होता था। आज हमारा हाल क्या, एक गली दूर जरा मस्जिद हो जाए या दीन का काम, तो हम कहते नहीं अब ये हमसे दूर बहुत है। नतीजा क्या, हम जा नहीं सकते। एक घर से दूसरे घर में आप कर देना तो बाद लोग यकीन करें दूसरे घर में जाने की वजह से भी सुस्ती करते हैं, अब कौन जाए, अब छोड़ दो। ये कब होता है? जब इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस रास्ते पे लगा दे।